शुरू करते हैं हम आयत नंबर 105 से। इससे पहले आप देख चुके हैं कि हमने बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें उनको कवर किया है, ख़ास तौर पे आपको अहमियत पता चली होगी नमाज की कि कितनी ज़्यादा अहमियत है नमाज की, कि यानी जंग के मैदान में भी नमाज पढ़ने का तरीका बता दिया गया। इसी तरह हमें ये भी पता चला कि अगर हम किसी जगह पे रहते हुए मजबूर हो गए हैं, वहाँ पे अल्लाह के अहकामात को नहीं हम फॉलो कर सकते, उनके ऊपर चल नहीं सकते, तो ज़रूरी है कि वहाँ से फिर हम हिजरत कर जाएं, कहीं ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पर अल्लाह ताला की दीन पर चलना मुमकिन हो सके। तो जिस जगह पे मुमकिन नहीं है, फिर उसके बाद ये नहीं डरना है कि अब के रिस्क का क्या होगा, मेरा इस चीज़ का क्या होगा, क्योंकि अगर फिर उस हालत में मौत आ गई तो फरिश्ते आके फिर कहेंगे कि अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासियतन फतुहाजिरू फीहा, तुम्हारे लिए जमीन अल्लाह की वसी नहीं थी, तुम हिजरत कर जाते, तुमसे नहीं अगर एक जगह रह के अल्लाह के कानून को फॉलो किया जाता। तो इसका मतलब ये एक्सक्यूज किसी का काम नहीं आएगा कि मैं क्या करती, हम तो ऐसी जगह रहते थे, हम तो वहां पे तो हो ही नहीं सकता था, वहां पे तो प्रॉब्लम थी, वहां पे तो मसला था, तो वो मसलों को नहीं उन्होंने सुनना। फिर आप हिजरत कर जाएं अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप दीन पे चलें। हाँ, सिवाय उन लोगों के जो बेचारे मजबूर हैं, उनका उनकी नहीं चलती। फिर आपको कसर नमाज का पता चला, फिर आपको कत्ले अमद कत्ले खता का पता चला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने कवर कर ली हैं, और किस तरह नमाज को वक्त के ऊपर पढ़ने की अहमियत आपको पता चली कि हमें नमाज वक्त पे पढ़नी है और नमाज पढ़ के बस भागना नहीं है, उसके बाद भी अल्लाह का जिक्र करना। ठीक है, आज भी हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला हमारी तरबियत कर रहा है, हमें वो चीज़ें सिखा रहा है जैसे आप बच्चे को सिखाते हैं ना कि बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा धोखा नहीं देना, बेटा फलां चीज़ से बच के रहना। तो एक एक चीज़ को अल्लाह ताला ने इस तरह से खूबसूरती से वाजे कर दिया, सिर्फ इसलिए, सिर्फ इसलिए ताकि उसके बंदे जहन्नुम की आग से बच जाएं। सबसे बड़ी ये बात है, और उनकी दुनिया की जिंदगी भी, ये नहीं कि सिर्फ आखरत में उनका भला हो जाए, उनकी दुनिया की जिंदगी भी पुरसकून हो जाए। और वाकई जब इन अहकामात में आप गौर करेंगे ना, तो ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, और जहां पे इम्प्लीमेंट होते हैं वहां पे कैसे जिंदगियां पुरसकून हो जाती हैं, वहां पे कैसे इस दुनिया की जिंदगी में भी इस इंसान को इत्मीनान मिलता है, उनके ऊपर फिर वाकई सकीनत नाजिल होती है, और आखरत में जहन्नुम की आग से बचाव मिल गया। तो ये रब्बे करीम की बड़ी मेहरबानी है कि उसने एक ऐसा कलाम नाजिल फरमाया जिसमें हमारे लिए इतनी हिदायत है। तो आज देखते हैं आज की आयात हमें क्या सिखाने के लिए आई है। इन्ना अंजलना इलैकल किताब, बेशक हमने नाजिल की है आपकी तरफ, अल किताब, ये किताब। इतनी बात के अंदर इतने मसाइल हैं, सुभान अल्लाह, लेकिन मैं मुख्तसरन सब कुछ सिर्फ टच करूंगी। पहली बात, इन्ना क्यों है, इन्नी क्यों नहीं है, मैंने नाजिल की, इन्ना है, बेशक हमने। इसलिए कि ये मतलब नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे जमा का सीगा है, तो नऊज़ु बिल्लाह कोई अल्लाह ताला के लिए कोई जमा का सीगा बोलने की ज़रूरत है, तो क्या अल्लाह एक से ज़्यादा है खुदा या क्या बात है, नहीं। ये है ताज़ीम के लिए, अल्लाह ताला की बड़ाई उसको सूट करती है, किबर उसको सूट करता है, किबर उसकी चादर है। और अल्लाह ताला ने कई कई दफ़ा कुरान पाक में अपने लिए हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे को खुदाओं की बात हो रही, एक ही खुदा की बात है। आप जैसे अपनी लैंग्वेज में भी देखें, बाज़ लोगों के हाँ ये आपको आम मिलेगा कि वो हम करके बात करते हैं, हम वहाँ गए थे, हमने ये किया, तो ये इस तरह से वो इसको हमारी जुबानों में भी एक इज्जत और तकरीम के लिए बोला जाता है। अच्छा, लेकिन जब हम अल्लाह ताला के लिए बोलते हैं तो हम उसको तू कह के कहते हैं, हम आप नहीं कहते, ऐसी इसकी क्या वजह है? आप में भी प्लूरल का माना आ सकता है, देखिए ना, आप में भी प्लूरल का माना आ सकता है ना, बहुत ज्यादा लोग भी बैठे हो तो हम कहते हैं आप, और एक भी बैठा होता तो हम कहते हैं आप, लेकिन जो तू है ना वो आप बहुत सारे लोगों को नहीं कह सकते, वो एक को ही आता है तू। तो अल्लाह ताला की ताजीम, हम तो इज्जत के लिए आप बोलते हैं, तो क्या हम जब तू बोलते हैं तो क्या ये कलमा सही नहीं है बोलना? नहीं, ये बात नहीं है। असल बात ये है, ये भी आज समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की जो अल्टीमेट ताजीम है वो उसकी तौहीद को बयान करने में, याद रखिए। क्या आपने पढ़ा, इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही, अल्लाह शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। उसकी ताजीम किसमें है कि आप उसके लिए तौहीद को बयान करें, उसकी इज्जत इसमें है कि आप उसके लिए आप ना कहें तू कहें, जिसके अंदर एक का माना है, कि कहीं शाइबा भी ना हो, थोड़ा सा भी, जरा लिटिल बिट ऑफ जो जिसको कहते हैं ना शक, वो भी ना हो कि आप कहा जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी दुआएं देखें, अंता अंता रब्बी, तू है मेरा रब, अन तुम नहीं कहा कहीं, ठीक है? जब अल्लाह ताला अपने लिए बयान करता है तो वो एक किबर, बड़ाई और वो वाला कलमा हमने, और हम जब अल्लाह ताला के लिए बोलेंगे तो हम तू बोलेंगे, इसलिए हम तू कहते हैं। अनजलना, हमने नाजिल की, अनजल में बतदरीज नाजिल करने का माना आता है, ठीक है? ग्रेजुअली नाजिल की, तो 23 साल में ये किताब नाजिल हुई है। इलैका, आपकी तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, अल किताब, अल किताब। अब जब उतरी थी तो किताब तुम्हें की तो फॉर्म में नहीं उतरी थी, वो तो वही आती रहती थी, तो फिर अल किताब क्यों कहा गया? इसलिए कि जहां लोहे महफूज में ये है तो ये वहां पे अल किताब ही तो है, एक किताब की शक्ल में ही है लोहे महफूज में, ठीक है? दूसरी ये बात हमें पता चलती है कि अल्लाह ताला ने ही नाजिल की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलाम नहीं है, जैसे बाज गैर मुस्लिम कहते हैं कि ये मोहम्मद का कलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। अच्छा, एक और बात, बाज गुमराह कुन फिरके गुजरे हैं, अब उनके नाम मैं आपको इसलिए नहीं ले रही कि वो अब उनके नामों से उनको वो नहीं जाने जाते, और पता नहीं अब उन नामों से हैं भी दुनिया में या नहीं, लेकिन आपको पता है कई फिरके जो गुजरे हैं उनकी सोच आज भी है लोगों के अंदर, यानी उस माइंड सेट के लोग आज भी मौजूद हैं, बेशक के शायद उनको पता भी ना हो कि ऐसे लोग पहले भी गुजरे हैं जो ये फिरका कहलाते थे। तो वो फिरके वाले कहते हैं कि ये जो है ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं है, ये अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैह सलाम की तरफ कुछ सोच डाली और जिब्राईल अलैह सलाम ये लेकर आए, तो ये उनका वो अल्फाज उनके हैं। तो यहाँ याद रखिए एक बात कि हमारा ये ईमान है कि ये अल्फाज भी अल्लाह के हैं, अल्लाह ताला कलाम फरमाता है और ये उसका कलाम है, ठीक है? अच्छा, अब इतनी बात हो गई, बिल हक, ये किताब उसने हक के साथ नाजिल फरमाई है, यानी ये किताब सरासर हक है, सच है। सच का मतलब क्या, इसमें जो बात है वो सच्चाई है, इसमें जितने वाकयात अंबिया के आए हैं, जितनी कयामत की बातें आई हैं, जितने अहकामात दिए गए हैं, सब सच्चाई पे मबनी है, इनमें कोई बात झूठ तो इसके करीब से भी नहीं गुजरा, ला रोईबा फी, इसमें कोई शक ना करना कभी भी, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, ये हक है। इसको ये सोच के पढ़ना कि ये सब सच है जो भी कहा जा रहा है, ठीक है? तो कभी शैतान अगर जहन में लेकर आए बात कि क्या पता, हमें क्या पता ये ऐसे है कि नहीं, नहीं, अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये हक है। दूसरी बात ये कि ये इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ना वो हक पे मबनी है, अगर अल्लाह ताला कोई एक बात फरमाता है वो वैसे ही है, उसके अंदर कोई भी, यानी जो आगे की भी बातें कही वो वैसे ही है, बिल्कुल उसके अंदर कोई भी ये बात की गुंजाइश के, यानी हो सकता है ये ऐसे ना हो, ये ऐसे हो सकता है, ये कहीं बदल गई हो
हो सकता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, हक है बिल्कुल। एक और बात, ये बा मकसद है, ऐसे ही नहीं ये उतार दी गई, इसका एक मकसद है। मकसद क्या है, क्या मकसद है? हाँ, पढ़ना सीखना, क्या मकसद है? लितहकुमा बैनन्नास, ताकि आप फैसला करें लोगों के दरमियान, इस किताब के जरिए, बीमा अराक अल्लाह, जो अल्लाह ने आपको दिखाया। क्या दिखाया अल्लाह ने आपको? यानी ये वही, मुराद क्या है? वही, जो वही अल्लाह ने आपकी तरफ भेजी, इसके मुताबिक आप फैसले करें, ये इसलिए आई है। समझ आ गई बात? पढ़ने सीखना क्या इसलिए नहीं आई? नहीं, बेशक जाहिर है, पढ़ेंगे सीखेंगे तो फिर ही फैसला करेंगे ना। आपको क्या पता, आपके पास एक किताब पढ़ी हुई है, आपको क्या मालूम इसमें क्या है? आप फैसला क्या करेंगे? आपको कहा गया इसके मुताबिक फैसले करें, क्या फैसला करें जब मुझे पता ही नहीं इसमें है क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया अल्लाह ताला ने कि आपने इसके मुताबिक फैसले करने हैं। कौन से फैसले? कौन से फैसले? यानी माशर्ती फैसले भी, अपनी जिंदगियों के फैसले भी इसके मुताबिक करने। एक अमूमी माने के तौर पे मैं आपको बताऊं तो हम मसलन अपनी लाइफ है, इसमें जितने फैसले करते हैं वो किसके मुताबिक होने चाहिए? बीमा अराक अल्लाह, जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया, और वो उसमें क्या है? वही, मैंने आपको कहा मुराद है। और वही में कौन कौन सी वही है? कुरान ही सिर्फ वही नहीं है, याद रखिए, ये वही की एक फॉर्म है। ये वो वही है जो तिलावत की जाती है, वही है मतलू है। एक वही है गैर मतलू भी है, जिसकी तिलावत नहीं होती लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से है, और उसका नाम हदीस है। वो ख्याल अल्लाह ने डाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में, और आपने उसके मुताबिक इस कुरान की तशरीह की, ठीक है? तो वो भी अल्लाह की तरफ से है, उसके मुताबिक यानी कुरान और हदीस के मुताबिक आप फैसले करें, इसके लिए ये किताब नाजिल की गई। अब हम कहते हैं हमने तो समझा था कि कोर्स करने के लिए, पढ़ने के लिए, इसके तर्जुमे याद करने के लिए, इसको समझने के लिए नाजिल हुई है। वो इनिशियल पार्ट है, वो फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन सिर्फ पढ़ पढ़ के इसके नोट्स बना बना के नहीं रखने भाई। फैसले तो आम जिंदगी में होंगे ना, फैसले तो आपकी डेली लाइफ में होने हैं, उन फैसलों के लिए इसकी तरफ रुजू कीजिए। मैंने खाना क्या है, मैंने पीना क्या है, मैंने रहना कैसे है, मैंने चलना फिरना कैसे है, मैंने कारोबार कैसे करने हैं, मैंने बोलचाल कैसी करनी है, कौन सी चाल अल्लाह को पसंद नहीं है, कौन सी चाल अल्लाह को पसंद है, मैंने रिश्ते नाते कैसे निभाने हैं, मैंने पहनना ओढ़ना कैसे है, मैंने खुशियां गमियां कैसे करनी है, कहाँ से फैसले लाएंगे? हम सिर्फ इतना सोचते हैं, नमाज पढ़ ली, रोजे रख ली, दैट्स इट, हमारा मुसलमान होने का हक अदा हो गया। अब और कुछ नहीं करना। कुरान कहता है, ये कुरान इसलिए आया ताकि आप इसके मुताबिक फैसले करें। हमने कोई अदालतों में तो हम बैठे नहीं कि वहां पे हम जज बन के बैठ जाएं और वहां पे फैसले करें, मगर अपनी जिंदगियों के तो फैसले करने हैं ना, वो किसके मुताबिक करेंगे? उसके लिए कहां से कानून लाएंगे? रूल्स आपको कहां से पता चलेंगे? वो ये किताब है। और हाँ, जो जज हैं, जो अदालतें हैं, जो मुल्कों के निजाम हैं, वो भी इसके मुताबिक ही चलेंगे। ये नहीं कि वहां पे नहीं चलेगा ये, वहां पे हम घबरा जाते हैं, हाय शरीयत के मुताबिक फैसले, हाय हमें तो ये हमारे ड्रामे बंद हो जाएंगे, फिल्में बंद हो जाएंगी, एक औरत की गवाही नहीं, दो की गवाही एक के बराबर होगी, तो फिर हमें तो हिजाब लेने पड़ेंगे, तो फिर हमें पता नहीं हमारी क्या क्या सोचें हो जाती, हम डर जाते हैं। हालांकि ये खौफ नहीं होना चाहिए, ये तो कुरान आया ही इसलिए ताकि तुम इसको अप्लाई करो अपने माशरों में, इसके कानून के मुताबिक होना चाहिए एक इस्लामी ममलिकत को। ये नहीं कि अपने अपने कानून बना के बैठ जाओ, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें फिजिबल लगता है, अंग्रेज का कानून ले आओ, तब भी फैसले इसी के मुताबिक होंगे। और आप आगे इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे सूरह मायदा में जनाब, कि जो इस किताब के मुताबिक फैसले नहीं करता, अल्लाह ताला ने उनको फरमाया वो काफिर है, वो जालिम है और वो फासिक है। 3 दफा आया ये, 3 दफा आया कि जो इस किताब के मुताबिक फैसला नहीं करेगा, और हम तो पसंद ही नहीं करते ना, फैसला करने तो दूर की बात है, हमारा तो वोट ही इसके लिए नहीं होता कि हाँ इस किताब के मुताबिक हमारे मुल्कों में फैसले हों। हम तो उन इस चीज को नहीं पसंद करते। मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया कि एक सर्वे हुआ था कि क्या शरीयत नाफिज होनी चाहिए। मुसलमान मुल्कों में ही जाहिर है मुसलमान मुल्कों में ही शरीयत नाफिज होगी, जाहिर है काफरों के मुल्क में तो नहीं शरीयत नाफिज होनी ना, वो तो अल्लाह को ही नहीं मानते तो शरीयत क्या नाफिज होगी। तो बहुत सारे मुसलमान मुल्कों में less than 50% लोगों ने कहा कि हाँ शरीयत नाफिज हो जाए, मेजोरिटी ने कहा नहीं। इसीलिए कुरान पाक को पढ़ना सीखना जरूरी है कि जब ये सोच बनेगी ना, जो कुरान की सोच होगी, माइंड सेट चेंज होगा ना, तभी तो आप अप्लाई करेंगे इस कुरान को, उस मुल्क के कानून में लाएंगे। जब सोच ही नहीं बदली हुई, जब सोच वेस्टर्न है, जब सोच वो है जो काफरों वाली है, तो फिर कौन पसंद करेगा इस कुरान की शरीयत को, कौन पसंद करेगा इसके कानून को। इसलिए ये थोपना नहीं है, लोगों को पहले इस तरफ लेकर आना है कि वो आमादा तो हो इसको एक्सेप्ट करने के लिए। और जब वो आमादा ही नहीं हो और बस उनके ऊपर लाद दिया जाए, तो फिर यही होता है जो एक मुल्क में हुआ था कि जब एक हुकूमत हटी तो जितनों की दाढ़ियां थी सबने अपनी दाढ़ियां शेव करवा ली, क्योंकि वो उस हुकूमत के डर से कर रहे थे, खुद नहीं करना चाहते थे। इसलिए ये कुरान नाजिल किया अल्लाह ताला ने ताकि इसको अप्लाई किया जाए। और हमने क्या किया, इसको ताक में रख दिया। हमने क्या किया, इसको दुल्हनों के सरों पे रखा ताकि वो रुखसत होते हुए बड़े बाबरकत तरीके से रुखसत हो, चाहे उस दुल्हन की जिंदगी में कुरान हो ना। अभी वो अपने फोटो शूट करा के बैठी हैं, अभी वो बन सज के सबके सामने बैठी हैं, अब उनको कुरान के साए में रुखसत किया जा रहा है। अभी उनकी शादी पे इसराफ हुआ है, अभी उनकी शादी पे वो अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानियां की गई हैं, धज्जियां उड़ाई गई हैं सुन्नतों की, और उसके बाद कुरान के साए में जी रुखसत हो रहा है। हमने इन कामों के लिए कुरान को रखा, या नया घर खरीद लें तो बस बरकत के लिए कुरान पढ़ लो, ये कुरान का मकसद कहां पे लिखा हुआ? लितहकुमा बैनन्नास, ताकि तुम लोगों में फैसले करो इसके साथ जो अल्लाह ताला ने आपको दिखाया है। और एक वाकया इसमें आपको बताती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे फैसले किया करते थे। अबू हुरैरा हज़रत ज़ैद बिन खालिद अज़जहनी बयान करते हैं कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, इतने में दो आदमी आए अपना मुकदमा लेके। एक ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे दरमियान अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करें। दूसरा, जो पहले के मुकाबले में ज्यादा होशियार था, उसने अर्ज किया है, अल्लाह के रसूल, आप हमारे दरमियान किताब अल्लाह के मुताबिक फैसले सुनाएं और मुझे मामले की नौयत की वजाहत करने दें। ठीक है, फैसला सुना ले, लेकिन मुझे वजाहत भी करने दें। आपने फरमाया ठीक है, तुम अपनी बात बयान करो। उसने कहा, बात दरअसल यह कि मेरा बेटा इस आदमी के घर मेहनत मजदूरी करता था, तो घर में आना जाना था उसका। तो कहता है कि मेरे बेटे ने इसकी बीवी के साथ जिना किया। मैंने मामले को रफा दफा करने के लिए अपने बेटे की तरफ से 100 बकरियां और एक लौंडी देकर इसको राजी कर लिया, यानी मैंने इसको इतना कुछ दे दिया। फिर मैंने इस सिलसिले में इल्म वालों से फतवा पूछ लिया, तो उन्होंने मुझे शरई सजा बताई है कि मेरे बेटे को 100 कोड़े लगाए जाए और 1 साल के लिए मुल्क बदर कर दिया जाए और इसकी बीवी को संसार कर दिया जाए। तो ये क्या बात हुई, यानी मैंने तो इसको दे दिया है, हमने तो आपस के अंदर ही डीलिंग कर ली हुई है। अब मुझे वो कह रहे हैं जी कि आप इसको को 100 कोड़े लगाएं और 1 साल के लिए मुल्क बदर करें और इसकी बीवी को, चूंकि शादीशुदा है, तो संसार किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बातें सुन के फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, यकीनन मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करूंगा। लौंडी और बकरियां जो है ना, तुम वापस ले जाओ और तुम्हारे बेटे को 100 कोड़े लगेंगे और साल भर के लिए उसको जिला वतन किया जाएगा। और ए उनैस, इस आदमी की बीवी के पास जाओ, अगर वो जिना का इतराफ कर लेती है तो उसको संसार कर लो। तो उस औरत ने इतराफ किया था, उसको संसार कर दिया गया था। इससे पता चला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की किताब के मुताबिक ही फैसले फरमाया करते थे। और देखो, चाहे फरीकैन ने आपस के अंदर सुलह सफाई करके सोच भी लिया कि हाँ ठीक है, चलो भाई मैंने ये सोच लिया, तुमने बकरियां दे दी, लौंडी दे दी, बात हमारी खत्म हो गई, तुम भी मजे में रहो, मैं भी मजे में रहूंगा। नहीं, इस तरह नहीं चलता, फैसले होंगे तो अल्लाह की किताब के मुताबिक होंगे। और अल्लाह की किताब के मुताबिक जो फैसले हैं ना, याद रखिए वो अदलो इंसाफ पे मबनी है। हमने पहले पढ़ा है ना ये बात, ये हम पहले सूरह निसा में ही पढ़ चुके। और अल्लाह ताला जो फैसला फरमाता है उसके अंदर कोई ना इंसाफी नहीं है, वो बिल्कुल हक है। तो अल्लाह ताला का तो नाम ही है अल हकम अल अदल, अदल जिसका नाम ही अल अदल हो तो उससे आप ना इंसाफी का कैसे सोच सकते। इन अल्लाह यामुरुकुम बिल अदली वल एहसान, अल्लाह तो तुम्हें भी हुक्म देता है अदल और एहसान करने का। तो अल्लाह ताला अदल के मुताबिक फैसले करने का हुक्म देता है और अदल इस किताब के मुताबिक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही फैसले फरमाए और आगे आपके सहाबा कराम में भी उन्होंने भी इसी तरह फैसले किए थे। उनके फैसले भी देखें, आपको एक मिसाल देती हूँ कि हजरत उमर एक दफा, उनको बड़ा घुड़सवारी का बड़ा शौक था, ठीक है। तो वैसे भी उन्होंने फरमाया ना कि अपने बच्चों को तीन चीजें जरूर सिखाओ, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग और ये तीरंदाजी। तो वो उनको बड़ा शौक था इसका, तो उन्होंने जा रहे थे तो एक घोड़ा देखा किसी आराबी के पास था, तो उन्होंने जाके घोड़ा देखा, उन्होंने पसंद आया, उन्होंने खरीद लिया। जब घोड़ा खरीद के आगे चले तो देखा कि घोड़े में कुछ नुक्स लग रहा है, सही तरह ये दौड़ नहीं रहा, उसकी टांगों में कोई मसला होगा। तो वापस लेकर आए, उस अराबी से कहने लगे कि भाई इसमें तो कोई नुक्स है तो इसलिए तुम इसको वापस ले लो। उसने कहा मैंने जब आपको बेचा था तब तो बिल्कुल ठीक था, अब आप कह रहे हैं इसमें नुक्स है तो मैं तो वापस नहीं लूंगा। वो कहने लगे तुम मुझे मेरे पैसे वापस दो, घोड़ा वापस लो। और उस वक्त वो कौन है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा वक्त है उस वक्त, हजरत उमर के जमाने की उनकी बात बता रही। उसने कहा भूल जाओ पैसों को, तो तुम घोड़ा पकड़ो और चलते बनो यहां से। अब इसके ऊपर बात बढ़ गई। अब इसके बाद फैसला ये हुआ कि हम काजी के पास जाते हैं। तो काजी उस वक्त थे वहां पे, काजी शुरैह, बहुत मशहूर काजी हैं, शुरैह बिन हारिस अल किंदी उनका नाम है। आप इनके बड़े वाकयात सुनेंगे। तो उनकी अदालत में गए तो उनके सामने जाके उन्होंने मुकदमा रखा। अराबी ने कहा कि ये कहते हैं मैंने घोड़ा इनको नुक्स वाला बेचा है, मैं कहता हूं जब मैंने बेचा था तो सही था, आप बेशक इनसे पूछ लें। काजी ने उनसे कहा कि आप बताएं जब आपने खरीदा था तो सही था घोड़ा? तो कहते हैं हाँ वाकई उस वक्त तो लग ही रहा था कि सही है। तो उन्होंने कहा फिर तो झगड़ा खत्म है, आप घोड़ा पकड़े और जाएं यहां से। अब हजरत उमर हैरान खड़े में देखे कि खलीफतुल वक्त है और काजी उनके खिलाफ फैसला सुना रहा है। तो उसी वक्त अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इतने मुतासिर होते ना, फरमाया काजी शुरह से कि हम आपको कूफा का जस्टिस बनाते हैं, यानी चीफ जस्टिस जैसे समझ लें, कह लें ये आपकी तरक्की कर देते हैं कि इतना इतना जबरदस्त यानी इंसाफ कि इनके सामने वो खड़े हैं जो अशरा मुबशरा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबी और फिर वो के जो खलीफा वक्त है। तो काजी शुरह को कूफा का जस्टिस बना दिए गए। आपको पता है ये काजी रहे थे 60 ईयर्स तक मुसलमानों के, हजरत उमर का पूरा दौर, हजरत उस्मान का, हजरत अली का और फिर हजरत मुआविया के दौर में भी 20 साल तक ये काजी रहे। तो यही वो काजी हैं जिनकी अदालत में हजरत अली फिर अपना मुकदमा लेकर आए थे अपने जमाने में, जब हजरत अली खलीफा थे, कि उनकी जीरा गुम हो गई थी जो उनको बड़ी पसंद थी। तो एक दिन बाजार में जा रहे थे, देखा तो एक यहूदी बेच रहा था वो जीरा, तो उनने फरमाया ये तो मेरी जीरा है। उसने कहा तुम्हारी कैसे हो गई, मेरी चीज है। ने कहा नहीं मेरे सामान से गिर गई थी तो ये तो मेरी है। तो कहते वो कहने लगा आप ही कैसी बात कर रहे हैं, अगर आप मेरी जीरा पर अपना दावा कर रहे हैं तो अब सिर्फ एक ही बात है कि हम जाके काजी के पास फैसला कराएं। हजरत अली और वो यहूदी दोनों फैसले के लिए काजी शुरह की अदालत में पहुंचे। अब काजी शुरह ने पूछा दोनों से क्या मामला है, उन्होंने कहा भाई ये मेरी जरा, उसने कहा ये मेरी है। काजी ने हजरत अली से फरमाया कि क्या आपके पास कोई सबूत है कि ये आपकी जरा है, उन्होंने कहा कि हाँ।
मेरे पास गवाह है। मैंने कहा आप गवाह लेकर आए, लेकिन दो लाने होंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कौन गवाह है आपके? मैंने कहा एक तो मेरा गुलाम है टिम्बर, और एक मेरा बेटा है। और बाज जगह पे आता है कि मेरे दोनों बेटे इसके गवाह हैं। काजी शुरैह ने कहा आपके गुलाम की गवाही तो मैं कबूल करता हूं, लेकिन आपके दोनों बेटों की गवाही मैं कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि बेटे की गवाही बाप के लिए कबूल नहीं हो सकती। तो हजरत अली ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैंने उमर बिन खत्ताब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस बयान करते हुए सुना है कि हसन और हुसैन जो है जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। काजी ने कहा बेशक ये बात सही है। तो उन्होंने कहा फिर आप इनकी गवाही नहीं कबूल करेंगे जो जन्नत के सरदार हैं जवानों के? उन्होंने कहा नहीं, जन्नत के सरदार हैं वो बात सही है, मगर आपके बेटे हैं। ये कह के उसने, काजी ने मुकदमा खारिज कर दिया, जिरा यहूदी के हवाले कर दी। अब यहूदी हैरान खड़ा हुआ है कि ये हो क्या गया, मुसलमानों का अमीर मुझे अपने काजी की अदालत में लेके गया है और काजी ने इसके खिलाफ मेरे हक में फैसला दे दिया, और इनके अमीरुल मोमिनीन कैसे हैं जिन्होंने चुप करके फैसला भी कबूल कर लिया और जा रहे हैं आराम से। फिर यहूदी कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपका दावा बिल्कुल सच है, ये जिरा आपकी है, फलां दिन ये आपसे गिर गई थी तो मैंने उठा ली थी, लिहाजा ये आपकी मिल्कियत है। और उसने कलमा शहादत पढ़ लिया। तो हजरत अली ने फिर फरमाया, मेरी ये जिरा भी तेरी और ये घोड़ा भी मैं तुझे देता हूं। ऐसे होते थे वो इंसाफ, ऐसी होती थी वो अदालतें। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले करो, और इसमें किसी की तरफदारी नहीं, किसी की जानिबदारी नहीं, वो कोई भी है। क्योंकि आगे एक बात आ रही है जो अहम वाकया है, जिसके बारे में ये जो आज हम आयात पढ़ने जा रहे हैं ना, ये आयात इसके गिर्द घूमती हैं। यानी आयत नंबर 113 तक, 105 से 113 तक इसी वाक्य के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तकुल्लिल खाइनीना खसीमा, ए नबी आप खयानत करने वालों के लिए झगड़ने वाले ना बने, यानी इनकी हिमायत में बोलने वाले ना बने। अब वाकया मैं आपको सुना दूं तो फिर आप लोग को ये बात समझ आ जाएगी। एक वाक्य, दो वाक्यात यहाँ पे, एक तो तिरमिजी में है, एक और भी वाक्या, लेकिन मैं पहले आपको ये वाक्या सुना देती हूँ। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरवाजे पर दो झगड़ने वालों की आवाज सुनते हैं, तो आप बाहर आते हैं और फरमाने लगे, मैं एक इंसान हूं जो सुनता हूं उसके मुताबिक फैसला करता हूं। यानी आप जो मुकदमा मेरे पास लेकर आएंगे मैं तो उसके मुताबिक। अभी एक औरत आके कुछ कहती है, मिसाल के तौर पे वो कहती है कि भाई मेरा खाविंद मेरे पर बड़ा जुल्म कर रहा है, बड़ा ये कर रहा है, वो मुझे मारता है, ऐसे करता है। अब उसको काजी कहता है कि अगर तुम्हें ठीक है खुला लेना तो तुम ले सकती हो। अब बात जो उसने आके बताई है उसमें हकीकत कुछ नहीं है। आप जाके घर में कहती है कि वो तो मुझे कह रहे हैं कि आप खुला ले लें। आपने जो बात बयान करी है उसने तो उसके मुताबिक ही फैसला बताना है ना। तो अच्छा, अब यहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैं एक इंसान हूं जो मुझे बात बताई जाती है उसके मुताबिक मैं फैसला करूंगा। बहुत मुमकिन है एक शख्स बहुत ज्यादा हुज्जतबाज हो, चर्ब जबान हो, और मैं इसकी बातों को सही समझ के उसके हक में फैसला दे दूं, और जिसके हक में फैसला कर दूं तो फिर वाकई वो उसका हकदार ना हो और वो ये समझ ले कि फिर उस वो जहन्नुम का एक टुकड़ा ले रहा है। अब इसको इख्तियार है कि ले ले या छोड़ दे। अब ये इसकी इसकी इस हदीस का आपको अच्छी तरह फहम इंशाल्लाह ताला इस वाक्य के बाद आगे जो मैं बताऊंगी उसमें आएगा। एक और पहले वाक्य सुन ले, मुसनद अहमद में है कि दो अंसारी एक विरासत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और जो उन्होंने बात बयान की तो उसको जमाना गुजर चुका था और दोनों के पास कोई गवाह नहीं था, जमीन का मामला था, समझ नहीं आ रही थी कितनी किसकी जमीन है। तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात बयान फरमाई जो मैंने अभी आपको बताई, और फरमाया मेरे फैसले की वजह से अपने भाई का हक ना दूसरा ले ले, अगर ऐसा करेगा तो कयामत के दिन अपनी गर्दन में जहन्नुम की आग लटका कर आएगा। अब वो दोनों जो सहाबी थे ना वो रोने लग गए, हर एक कहने लगा मैं अपना हक अपने भाई को माफ करता हूं, मैंने दे दिया, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जमीन।
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم جاؤ اپنے طور پر جہاں تک تم سے ہو سکے ٹھیک ٹھیک حصے تقسیم کر لو، پھر قرآن اندازی ڈال کے حصہ لے لو، اور ہر ایک دوسرے کو اپنا رہا سہا غلطی کا حق بھی معاف کر دے کہ اگر کوئی اس میں غلطی رہ گئی ہے، میری طرف زیادہ حق چلا گیا ہے یا دوسرے نے میرا زیادہ لے لیا تو میں معاف کرتا ہوں دوسرے کو. ایسے وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو اب جو واقعہ جس جو ان آیات کے بارے میں جو ان آیات کا شان نزول بنتا ہے نا، کس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی، اب اس کی طرف آتے ہیں. یہ واقعہ بہت طویل بھی کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ یہ واقعہ ہے کہ بنی عبیرک ایک قبیلہ تھا، قبیلے کا سمجھ لیں ایک بنو ظفر قبیلہ تھا، لیکن اس کی ایک فیملی تھی بنی عبیرک، جس میں بشر، بشیر اور مبشر تھے. بشیر ایک سمجھ لیں منافق قسم کا آدمی تھا، شیر کہتا تھا، خود کہتا تھا اور دوسروں کے نام لگا کے کہتا تھا فلاں نے کہے میں، اور اصحاب رسول کے بارے میں بری باتیں ان شیروں میں ہوتی تھی، اور خوب مزے لے لے کے پڑھتا تھا، کہتا تو یہ تو ان کی باتیں ہیں. جیسے بعض لوگ آج بھی کیا ہوتا ہے، بات اپنی ہوتی، کہتے ہیں فلاں کہہ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں ایسے، وہ لوگ نہیں کہہ رہے ہوتے، خود ہی اصل میں اس کی بات ہوتی ہے، وہ خود ایسا سوچ رہا ہوتا ہے، نہیں لوگ پھر یہ کہتے ہیں، لوگ پھر یہ کہتے ہیں، وہ لوگ نہیں پیچھے ہوتے اس کے. اسی طرح یہ آدمی تھا کہ دوسروں کے نام لگا کے کہ کسی نے یہ شعر کہا ہے، فلانے نے یہ شعر کہا ہے، اور خود کہے ہوتے تھے. اچھا اب وہ زمانہ ایسا تھا مدینہ میں کہ بڑے فاقے کے دن تھے، اور مدینہ کے لوگوں کا نا اکثر کھانا جو تھی اور کھجوریں تھیں. جو بڑے امیر کبیر لوگ ہوتے تھے وہ پھر قافلے والوں سے آٹا وغیرہ خرید لیتے تھے، جس کو رکھ لیتے تھے کہ چلو کوئی مہمان آئے گا تو اس کو دیں گے. یعنی آٹا ان کے لیے بہت بڑی ایک چیز تھی، بہت ایک لگژری تھی آٹا سے روٹی کھانا. تو قتادہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا رفا، ان کے چچا تھے، نے بھی شام سے آئے ہوئے قافلے سے ایک بوری آٹے کی خریدی تھی اور اپنے بالا خانے میں اسے محفوظ کر لیا تھا، یعنی اس کو سٹور میں رکھ دیا تھا، جہاں ہتھیار بھی پڑے ہوئے تھے، زرہ تلواریں بھی رکھی ہوئی تھی. رات کو چور آئے اور وہ آٹا بھی لے گئے اور ہتھیار بھی. صبح میرے چچا میرے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا. اب ہم تجسس کرنے لگے کہ کیسے، کہاں گیا، کس نے چوری کیا. تو پتہ چلا آج رات بنو عبیرک کے گھر میں آگ جل رہی تھی اور کچھ پکا رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے وہی آپ سے چوری کر کے لے کے گئے، کیونکہ اتنے فاقے کے اس کے اندر ان کے پاس کہاں سے آگے. دوسرا ایک اور دوسری جگہ پہ جو یہ بات آتی ہے، یہ واقعہ آتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس بوری کے اندر سوراخ تھا. اب جو چور لے کے گیا اس کو پتا نہیں تھا، اس کے گھر تک وہ آٹے کے نشان پڑ گئے. بعد میں اس کو جب یہ ہوا کہ یہ تو مجھے پکڑ لیں گے آ کے، اور یہ تو اب نکلے میں تحقیق کرنے کے لیے، اور میرا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو اس نے اٹھا کے اس بوری کو، اور زرہ بھی ایک چوری کی تھی، جو آرمر ہوتا ہے نا اس زمانے میں پہنتے، وہ زرہ اور وہ آٹے کی بوری اس نے لے جا کے یہودی کے پاس امانت رکھ دی کہ میری یہ امانت رکھ لو، اس نے رکھ لی. اب جب یہ آٹے کے نشان وہاں تک جا رہے تھے، اس کو کہا تم اپنے گھر کی تلاشی دو، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں. اسی آدمی نے کہا جو مسلمان تھا، اس نے کہا دیکھو بھائی، یہ دیکھو یہ آٹے کے نشان، تو یہ آگے جا رہے ہیں، یہ دیکھو. وہاں سے وہ چلتے چلتے اس کو فالو کیا تو یہودی کا گھر آ گیا. اس یہودی سے انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے یہ چرایا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، انہوں نے تو میرے پاس امانتن رکھا ہی ہے. نے کہا نہیں، اب تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں، میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ تو اس نے ہی چوری کی ہے. اب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، یہ حضرت قتادہ یہ معاملہ لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ ہمیں ہمارے ہتھیار دلوا دیں اور غلہ وغیرہ بھی جس نے چوری کیا، اور لگتا یہی ہے کہ یہ بنو عبیرک کا کام ہے. اب جب انہوں نے یہ کی تو یہ خبر بنو عبیرک کو پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چوری کا مقدمہ لے کے پہنچ گئے، تو انہوں نے اپنا آدمی آپ کے پاس بھیجا جس کا نام اسید بن عروہ تھا. انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے، یہ تو ایسے ہو رہا ہے جیسے ہوتا ہے، بنو عبیرک تو بڑے نیک لوگ ہیں، اسلام والے لوگ ہیں، اور دیکھو اس قتادہ کو اور اس کے چچا کو یہ ہمیں چور کہہ رہے ہیں،
اور بغیر کسی ثبوت کے ہمارے پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انکلینیشن انہی لوگوں کی طرف ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی لگا کہ یہی سچ کہہ رہے ہیں, واقعی ان کے اوپر کوئی مطلب ایسا کوئی ثبوت تو ہے نہیں, اور یہودی نے ہی چوری کی ہوگی. تو قتادہ کہتے ہیں جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے مجھ سے فرمایا یہ تو بہت برا کیا تم نے کہ دین دار لوگوں پہ بھلے اچھے بھلے لوگوں کے اوپر تم نے چوری چپکا دی جبکہ تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں. کہتے میں چپ چاپ واپس آ گیا اور میرا دل اتنا پشیمان تھا اور مجھے دل کر رہا تھا کاش میں اس سارا مال جو ہے نا میرا چلا جاتا لیکن میں چپ کر کے بیٹھ جاتا اور اس بات کا ذکر ہی نہ کرتا آپ کے پاس کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا ہے. ان کے لیے تو بہت بڑی یہ بات ہوتی تھی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات سے ناراض ہو جائیں. کہتے ہیں اتنے میں میرے چچا ہے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا کیا تم نے اس واقعے کا, تو کہتے ہیں میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسے ایسے تمہارے ساتھ ہوا. انہوں نے کہا اللہ المستعان, اللہ ہی ہمارا مددگار ہے, اللہ سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات ادھر کہی, ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتر آئی اور یہاں پہ یہ آیات اتری وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, اے نبی آپ خائنوں کے لیے جھگڑا کرنے والے نہ بنے, آپ ان کے حمایتی نہ بنے. خائنین سے مراد کون سے تھے؟ بنو بیرک. ٹھیک ہے, تو جب یہ آیتیں اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بیرک سے ہتھیار دلوائے ان کو, رفا کو جو چچا تھے حضرت قتادہ کے, اور یہ بیچارے بوڑھے تھے آنکھوں سے بھی ان کو نظر کم آتا تھا. تو قتادہ سے کہنے لگے کہ بیٹا جاؤ یہ سارے ہتھیار اللہ کے نام پہ خیرات کر دو, یہ سب چیزیں نا. تو پھر کیا ہوا تھا, یہ جو آدمی جس نے چوری کی تھی اس کا بھی آپ کو بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آگے جا کے یہ ساری بات آئے گی, کہ یہ آدمی بشیر اس کا نام تھا اور توعمہ اس کا لقب تھا. تو یہ پھر جب یہ آیات اتری تو پھر یہ مدینہ چھوڑ کے چلا گیا, اور اس کا پھر کیا بنا پھر وہ آگے ہم بات کریں گے. پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں اس بات کو جو ابھی تک ہم نے یہاں پہ پڑھی ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے نبی آپ خائنین کی طرف سے جھگڑا کرنے والے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سوچا ہی تھا, انہوں نے ابھی فیصلہ نہیں کچھ دیا تھا, لیکن آپ ان کی حمایت میں کھڑے نہ ہوں, آپ ان کی حمایت نہ کریں. جیسے کہ میں نے آپ کو یہ حدیث بتائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے سامنے کوئی ایسے آتا ہے جیسے یہ لوگ چرب زبان تھے, انہوں نے آ کے ایک بات کہہ دی. اب نبی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو غیب کا علم نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کیوں کرتے. نبی غیب کا علم نہیں جانتے, اور دوسری بہت اہم بات یہ پتہ چلتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیصلہ دے دیتے کہ یہودی کا چوری کے لیے اس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے کیونکہ اس کے گھر سے برآمد ہوئی ہیں چیزیں, تو ہمیشہ تک کے لیے رہ جاتا, جنہوں نے چوری کیا ان کو بھی پتا ہوتا کہ انہوں نے تو غلط فیصلہ دیا, اور یہودی کو بھی پتا ہونا تھا, اور یہ آپ کی نبوت کی شان کے خلاف ہوتا, آپ کی عظمت کے خلاف ہوتا, تو یہ تو بہت بڑا ایک دھبا ہو جاتا آپ کی شان پہ. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو محفوظ رکھتا ہے, یہ ہوتی ہے اللہ کی حفاظت. اور لوگ ظاہر ہے جو بھی شواہد ہوں گے, جو بھی ایویڈنس ہوگی, جو بھی پروف ہوں گے, جو بھی گواہ ہوں گے, ان کے مطابق فیصلہ کریں گے. ان کے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ان کے اوپر گناہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذرا سی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ہو جاتی تو وہ آپ کی شان نبوت کے خلاف ہو جاتا نا, کہ یہ تو کہتے ہیں ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی تو انہوں نے تو فیصلہ بھی غلط کیا, ان کو تو یہی نہیں پتا.